प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति ये सत्य वचन ये जीवित वचन सबसे उत्तम ज्ञान यही है आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 10वें अध्याय को जारी रखेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय होगा कुरनेलियुस के घर में पत्रस का पहुंचना और पत्रस द्वारा प्रभु की साक्षी तथा कुरनेलियुस और उसके परिवार का उद्धार। सो आइए हम 23वें पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिर को आपके आगे झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको दिए हैं कि हम आपके पवित्र और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन को समझने और ग्रहण करने की सामर्थ्य हमको प्रदान करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी संकट में है, क्लेश में है या किसी घोर अपराध में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो मित्र आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक उसका 10वां अध्याय 23वें पद से हम अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर घर में ठहराया, उसने अर्थात पतरस ने, और दूसरे दिन वह उठा और उनके साथ गया और याफा के रहने वाले भाइयों में से कुछ उसके साथ गए। अब हमने यहां पर पढ़ा कि पतरस ने उन व्यक्तियों को जो कुरनेलियुस के द्वारा भेजे गए थे भीतर बुलाकर अपने साथ ठहराया और दूसरे दिन कुरनेलियुस के घर के लिए प्रस्थान किया। पतरस याफा से कैसरिया जा रहा है, उनके साथ उनके विश्वासी भाई भी हैं और ये यात्रा भूमध्य सागर के पूर्वी तट के सहारे सहारे हो रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन वह कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियुस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्रोता, 24वें पद के अनुसार कुरनेलियुस भी अपने परिवार सहित पतरस की प्रतीक्षा कर रहा था। वो बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। मित्र, कुरनेलियुस का अपने परिवार पर अच्छा प्रभाव था, इसलिए संपूर्ण कुटुंबी तथा उसके भक्त सैनिक भी उसके साथ प्रभु के सेवक की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रकार कर रहे थे जैसे कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि कुरनेलियुस एक गैर यहूदी व्यक्ति है, परंतु जब स्वर्गदूत ने उससे पत्रस के विषय में चर्चा की तो तो वह समझ गया कि पतरस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह अवश्य ही कोई मुख्य अतिथि है, कोई विशेष व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, आपकी भाषा में वह वीआईपी है। और जैसे ही वह पतरस को देखता है, वह पतरस के चरणों में गिरकर उसे दंडवत करता है। देखिए, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है कि जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने क्या किया? क्या उसने अपने पैर और आगे को बढ़ा दिए? क्या वो उस रोमी सैन्य दल के सूबेदार से अपने चरण स्पर्श करवाता रहा और प्रसन्न हो गया या घमंड से भर गया? नहीं मित्र, ऐसा नहीं हुआ। पतरस एक आत्मिक जन था, वो प्रभु का जन था। आत्मिक जन ऐसा नहीं करते। पतरस ने उसके प्रत्युत्तर में क्या किया, आइए 26वें पद में देखें। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। मित्र, पतरस स्वयं नीचे झुक गया और उस परमेश्वर भक्त को उसने ऊपर उठाया। हमें परमेश्वर के भक्तों को आदर देना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर प्रभु का आत्मा निवास करता है। आज बड़े बड़े साधु संत भक्तों से चरण स्पर्श कराने तथा चरण चुंबन कराने में गौरव का अनुभव करते हैं, किंतु संत पतरस का व्यवहार उनके लिए एक उदाहरण है, क्योंकि उसका व्यवहार पूर्णतः भिन्न है। हमें परमेश्वर के भक्तों का आदर करना चाहिए। तब पतरस कुरनेलियस के घर में प्रवेश करते हैं और 27वें और 28वें पद में हम पढ़ते हैं, उसके साथ बातचीत करते हुए जब वह भीतर गया तो उसने बहुत लोगों को एकत्रित देखा। उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है, फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। मित्रवर, पतरस के लिए यह एक ऐतिहासिक दिवस था, क्योंकि इससे पूर्व उसने कभी किसी अन्य जाति व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं किया था। वह पहली बार किसी गैर यहूदी के घर में प्रवेश कर रहा था। वास्तव में वह अब भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में हिचकिचा रहा है, संकोच महसूस कर रहा है। इसलिए पतरस का वार्तालाप बड़ा ही निराधारपूर्ण है। 28वें और 29वें पद को देखिए, इसलिए जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के चला आया, अतः अब मैं पूछता हूं कि तुमने मुझे किस अभिप्राय से बुलाया है। अब यहां हम देखते हैं कि पतरस किस तरह से उनसे बातचीत कर रहा है। अब उनसे कहता है कि तुमने मुझे किस अभिप्राय से बुलाया है, किस काम से बुलाया है। किंतु कुरनेलियस बड़ी नम्रता के साथ उसे उत्तर देता है। वो कहता है, 4 दिन हुए ठीक इसी समय जब मैं अपने घर में संध्या समय लगभग 3 बजे प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ और उसने कहा, कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं, अतः किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस भी कहलाता है, अपने पास बुला ले। वह समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाले शमौन के यहाँ ठहरा हुआ है, अतः मैंने तुरंत उसे बुलवा भेजा और तूने बड़ी कृपा की कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं कि जो कुछ प्रभु ने तुझसे कहा है उसे सुने। सो हम यहाँ देखते हैं कि सर्वप्रथम पतरस उनसे कहता है कि मैं किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को, वस्तु को ना छूं, किंतु परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुमसे बातचीत करूं। उसी ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं, क्योंकि हम सब पापी हैं, परंतु हमारा उद्धार हो सकता है। कोई पापी ऐसा नहीं जिसकी मुक्ति ना हो सके। सबके लिए मोक्ष संभव व उपलब्ध है। पतरस अपने संदेश को जारी रखते हुए उनसे कहता है, इसलिए जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के चला आया हूं। और फिर वो उनसे प्रश्न करता है कि तुमने मुझे किस कारण से बुलाया है। तब 30 से 33 पदों में कुरनेलियस ने सब कुछ स्पष्ट रूप में पत्रस के समक्ष रख दिया और वो बताता है कि मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूत की आज्ञा अनुसार तुझे याफा से बुलवाया है। अब जो संदेश तेरे पास मेरे लिए है वह मुझ तक पहुंचा दे। मित्रवर, अब सुनने वाला और वचन को सुनाने वाला दोनों तैयार हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा इसी प्रकार से अपना कार्य करता है। वह सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को तैयार करता है। आज हम इन पदों में यही सीखते हैं कि हमें अपनी सेवकाई के मध्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर करना चाहिए। तो अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, यहां लिखा है 34वें पद को देखिए। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु प्रत्येक जाति में जो उसका भय मानता है तथा धार्मिकता के कार्य करता है वही उसे ग्रहण योग्य होता है। उसने यीशु मसीह के द्वारा, वह सबका प्रभु है, जो वचन इसराइलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा। तुम स्वयं ही उस वचन को जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के पश्चात गलील से लेकर संपूर्ण यहूदिया में फैल गया। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सबको जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब बातों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में की थीं, और उन्होंने क्रूस पर लटकाकर उसे मार भी डाला। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाकर प्रकट भी होने दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने मृतकों में से उसके जी उठने के पश्चात उसके साथ खाया पिया। उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करें और दृढ़तापूर्वक साक्षी दें कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायी नियुक्त किया है। सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। प्रिय मित्र, पत्रस इस समय अपने दर्शन तथा कुरनेलियस के दर्शन के आधार पर उन्हें परमेश्वर के सत्य को समझा रहा है। मनुष्य अभी तक परमेश्वर के वास्तविक रूप के विषय में नहीं जानता। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जैसे कि हमने 34 और 35 पदों में पढ़ा। पत्रस उनको बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु प्रत्येक जाति में जो उसका भय मानता है तथा धार्मिकता के कार्य करता है वही उसे ग्रहण योग्य है। जो लोग वहां एकत्रित हैं वे यूहन्ना बपतिस्मा दाता तथा यीशु के संदेश व कार्यों से परिचित हैं, क्योंकि पत्रस उनसे कहता है कि तुम स्वयं ही उस वचन को जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के पश्चात गलील से लेकर संपूर्ण यहूदिया में फैल गया। तब 38 से 40 पदों को हमने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इन पदों में शमौन पत्रस प्रभु यीशु मसीह से संबंधित कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये तथ्य बताते समय उन्हें इस बात का भी ध्यान है कि वे अनेक बातों को पहले से भी जानते हैं। पत्रस उन्हें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए और उन्हें लकड़ी के क्रूस पर लटकाया गया। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह लकड़ी के क्रूस पर लटकाकर मारे गए, परंतु वे तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए। परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया और उनको प्रकट भी किया, जिसके हम गवाह हैं। पत्रस कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस समस्त घटना के हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं। यहां पत्रस 42वें पद में कहते हैं, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करें और दृढ़तापूर्वक साक्षी दें कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्रस यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए तथा तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए। मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का केंद्र है और जिस प्रकार से मानव शरीर में मनुष्य का हृदय, उसी प्रकार सुसमाचार के लिए मसीह के पुनरुत्थान का महत्व है। सुसमाचार मृत्यु का नहीं वरन जीवन का संदेश है, जो मसीह के मृतकों में से जीवित होने के द्वारा संभव होता है। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि यदि मसीह मृतकों में से जीवित नहीं हुआ तो हमारा प्रचार करना तथा तुम्हारा विश्वास लाना व्यर्थ है। मित्रवर, मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान ऐतिहासिक सत्य है और इस पुनरुत्थानित उद्धारकर्ता पर आपका विश्वास और आपके संबंध आपके अनंत जीवन अर्थात आपके अनंत गंतव्य स्थान को निश्चित करता है। बंधुवर, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनः मृतकों में से जीवित हुआ, जैसा कि रोमियों की पत्री के 4:25 पद में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण मारे गए और मुझे और आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए वह पुनः मृतकों में से जीवित हुए। 39 पद में हमने पढ़ा, हम उन सब बातों के गवाह हैं। पत्रस कहते हैं कि हम इन सब बातों के गवाह हैं। वो दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों और भले कार्यों के गवाह हैं। हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के गवाह हैं। हमने सब कुछ आंखों से देखा है, हमने यीशु को हाथ से स्पर्श किया है, हमने अपने कानों से उसके वचनों को सुना है। और इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में यह दावा करते हैं कि मसीह यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें प्रत्येक अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं पुनः कह रहा हूं, आज हमें मसीह के गवाह बनने की आवश्यकता है। आप कुछ भी हैं, परंतु यदि मसीह के गवाह नहीं, यदि आपके जीवन से मसीह का प्राण देना तथा मृतकों में से जीवित होना प्रमाणित नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ है। पत्रस के इस भाषण का अंत उद्धार के संदेश से होता है। प्रेरित पत्रस कैसे भी थे, अनेक बातों में वे दुर्बल थे, परंतु वे निर्भीकता के साथ मसीह के सुसमाचार को सुनाते रहे। उन्होंने अपने भाषण का अंत इन शब्दों से किया कि प्रत्येक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। मित्र, ये संदेश आपके लिए भी है। यदि आपको पापों से मोक्ष की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु मसीह पर अपने मन से विश्वास कीजिए कि वह आपके पापों के बदले में मारे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए। आपके पापों की क्षमा निश्चित है, क्योंकि 42 पद हमको बताता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया है कि वह जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया जाए। इसलिए मेरे मित्र, आपको इस न्यायकर्ता को अपना उद्धारकर्ता बनाने की आवश्यकता है, ताकि आप दंड के भागी ना हो, आप दोषी ना ठहरे। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, 44 पद से देखें, तब पत्रस यह वचन कही रहा था। जब पत्रस यह वचन कही रहा था तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए हुए थे सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया है, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पत्रस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया है बपतिस्मा ना पाए? और उसने आज्ञा दी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे कुछ दिन और ठहरने के लिए विनती की। मित्रवर, कलीसिया के इतिहास में यह घटना अन्य जाति अर्थात गैर यहूदियों के पिंतेकुस्त के नाम से प्रसिद्ध है। पत्रस इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित है। उसके विचार से यह कार्य अनहोना है और पवित्र आत्मा के उतरने का बाहरी चिन्ह यह था कि वे अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। मित्रों, अन्य जाति व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा की सहायता के परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। वो तो बहुदेववाद पर विश्वास करता है। वो सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की उपासना करता है, परंतु जब पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य जाति लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अन्य अन्य भाषाओं का बोला जाना पत्रस के लिए इस बात का प्रत्यक्ष चिन्ह था कि परमेश्वर पिताजी अन्य जातियों को भी बचाना चाहते हैं और उन्हें भी पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। दूसरे शब्दों में उद्धार इसराइल से निकलकर समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर का वरदान बन गया। और इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3:16 में हम परमेश्वर के दास अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। उनको जो प्रतिज्ञा दी गई उसमें यह प्रतिज्ञा सम्मिलित है कि पृथ्वी की समस्त जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी, अर्थात जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वह नाश नहीं होगा। तब पत्रस आगे चलकर इस घटना का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि अन्य जातियों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन भराव का वरदान दिया है। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 15:7-11 पदों में पत्रस पुनः इस घटना को उद्धृत करते हुए बताते हैं, अर्थात घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों को दिया गया है और वे भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसी प्रकार बचाए गए हैं जिस प्रकार यहूदी बचाए गए हैं, क्योंकि मसीह का वरदान और पुनरुत्थान, मसीह का बलिदान और उनका पुनरुत्थान, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी हो, सबके लिए समान रूप से प्रभावशाली है। और उस समय के यहूदियों के लिए ये विश्वास करना कि गैर यहूदी भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं कोई सरल कार्य नहीं था। 48वें पद में हमने पढ़ा, और उसने आज्ञा दी, अर्थात पत्रस ने आज्ञा दी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे कुछ दिन और ठहरने के लिए विनती की। मित्रवर, ये पद बताता है कि कुरनेलियस तथा उसके परिवार ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, और जिस प्रकार एक यहूदी को खतने की विधि पर अधिकार है उसी प्रकार बपतिस्मा एक विश्वासी का अधिकार है। जब वह मसीह पर विश्वास लाता है तो वह बपतिस्मे द्वारा अपने विश्वास को संसार पर व्यक्त करता है। वह अपने भीतरी परिवर्तन को बपतिस्मे द्वारा बाहर व्यक्त करता है। कुरनेलियस और उसके परिवार ने ऐसा ही किया। जो कुछ उनके हृदय में हुआ था उसको उन्होंने बपतिस्मे के द्वारा बाहर प्रकट किया। बपतिस्मा एक प्रकार से मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। एक विश्वासी जन बपतिस्मे के समय जब जल में जाता है तो वह अपने पापों के लिए मर जाता है, और जब वो जल से बाहर आता है तो वह परमेश्वर के लिए अनंत जीवन के लिए जीवित रहता है। कुरनेलियस और उसके परिवार ने ऐसा ही किया है। उन्होंने पहले पवित्र आत्मा प्राप्त किया, तब बपतिस्मा अर्थात जल से बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार हृदय परिवर्तन के 3 प्रतिनिधियों के संबंध में हमारा अध्ययन पूरा होता है। सबसे पहले हमने देखा इथोपिया की रानी कंदाके के मंत्री को, ये हाम का वंशज था। तरसुस का शाउल, पौलुस जो शेम का वंशज था, और तीसरा था रोमी सेना का सूबेदार कुरनेलियस, ये येपेत का वंशज था। तीनों स्थानों पर पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के सेवक तथा परमेश्वर के वचन का उचित प्रयोग हुआ और उसके फलस्वरूप हृदय परिवर्तित हुए और हृदय परिवर्तन का परिणाम उद्धार हुआ। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
जाएंगे हम बढ़ते जाएंगे।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।